आकाशवाणी है। अब आप आकर्षिता सिंह से समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिकों से संविधान के आदर्शों को अपनाने, अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करने तथा 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में काम करने का आग्रह किया है। आज संविधान दिवस के अवसर पर नई दिल्ली स्थित संविधान सदन के सेंट्रल कक्ष में आयोजित भव्य समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय संविधान को जीवंत और प्रगतिशील दस्तावेज बताया, जिसके माध्यम से देश सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के लक्ष्यों को प्राप्त कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सुरक्षा को चुनौती देने वाले किसी भी आतंकी संगठन को मुंहतोड़ जवाब देने के भारत के संकल्प पर बल दिया है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय में संविधान दिवस समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश परिवर्तन के महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है और भारत का संविधान आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश अपने नागरिकों के लिए जीवन को आसान बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। उन्होंने कहा कि पहले वरिष्ठ नागरिकों को अपनी पेंशन प्राप्त करने के लिए अपने जीवित होने का प्रमाण देने के लिए बैंकों में जाना पड़ता था, लेकिन अब वे अपने घर बैठे ही डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने भारतीय न्यायपालिका की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 भी जारी की। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा है कि संविधान में निहित समानता के प्रावधानों को मोदी सरकार ने अपने दृढ़ संकल्प और नेतृत्व के माध्यम से साकार किया है। नई दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आज संविधान दिवस पर एक कार्यक्रम में श्री कुमार ने ये बात कही। जम्मू कश्मीर में विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राठर ने आज जम्मू में विधानसभा परिसर के सेंट्रल हॉल में संविधान की प्रस्तावना पढ़कर संविधान दिवस समारोह का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि ये दिन हमारे देश की लोकतांत्रिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। 26/11 मुंबई आतंकी हमले की आज बरसी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आतंकी हमले में जान गंवाने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। संविधान दिवस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने हमले में बलिदान देने वाले पुलिस अधिकारियों और जवानों की शहादत पर पुलिस शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार का संकल्प भारत को 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का है और इस अभियान में सहकारिता मंत्रालय अहम भूमिका निभाएगा। आज नई दिल्ली में राज्य सहकारी बैंकों की राष्ट्रीय परिसंघ के हीरक जयंती समारोह में श्री शाह ने कहा कि सरकार ऐसा विकास चाहती है जिसमें देश का हर नागरिक शामिल हो। निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 6 सीटों के लिए उपचुनाव की आज घोषणा की। 3 सीटें आंध्र प्रदेश से हैं, जबकि उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और हरियाणा से एक एक सीट है। उपचुनाव के लिए मतदान और मतगणना 20 दिसंबर को होगी। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने हाल ही में हुई मणिपुर हिंसा से जुड़े 3 मामलों की जांच शुरू की। गृह मंत्रालय द्वारा अपराधों की गंभीरता को देखते हुए मामले सौंपने का फैसला किए जाने के बाद एनआईए ने इन मामलों को फिर से दर्ज किया। 13 नवंबर को भारतीय न्याय संहिता, शस्त्र अधिनियम और गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम की संबंधित धाराओं में मामले फिर से दर्ज किए गए। भारत ने बांग्लादेश में अधिकारियों से हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश सम्मिलित सनातन जागरण ज्योत के प्रवक्ता चिन्मय कृष्ण दास को गिरफ्तार करने और उनको जमानत देने से इनकार करने पर गहरी चिंता व्यक्त की। मौसम विभाग ने बंगाल की दक्षिण पश्चिम खाड़ी में फेंगल चक्रवात आने की आशंका व्यक्त की है। अगले 2 दिनों में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में अत्याधिक बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। राज्य के कई हिस्सों में 2 दिसंबर तक बारिश जारी रहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।